Good afternoon, student of MSc 4th semester School of Studies in Microbiology. So today's topic is phosphatase and reductase test. First is phosphatase test. The full form of phosphatase test is alkaline phosphatase test. As you know that pasteurization is an essential process in the production of milk or in the production of clean milk, okay, which is free from all the pathogens. This milk is safe for human use. Alkaline phosphatase is an enzyme which is naturally present in the milk, but it is destroyed at temperatures just near to the pasteurization temperature. Alkaline phosphatase test is used to indicate whether the milk has been adequately pasteurized or whether it has been contaminated with raw milk still after pasteurization. तो जो alkaline phosphatase है वो एक एंजाइम होता है जो कि naturally milk में present रहता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि raw milk में present रहता है, क्योंकि milk के pasteurization होने तक, pasteurization के temperature आने तक ये एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाता है. तो मिल्क प्रॉपरली पाश्चराइज्ड हुआ है या नहीं हुआ है इसका पता लगाने के लिए हम ये टेस्ट कर सकते हैं. एंड दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम इन रॉ मिल्क लिबरेट्स फिनॉल फ्रॉम अ डाइसोडियम पैरा नाइट्रोफिनॉल फॉस्फेट. And forms a yellow colored complex at alkaline pH. Okay, it means कि अगर raw milk है तो उसके अंदर अगर वो properly pasteurized नहीं हुआ है तो alkaline phosphatase enzyme उसके अंदर होगा, तो वो इसमें जब उसमें जब हम डाइसोडियम पैरा नाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट जब ऐड करेंगे तो उसमें से ये फिनॉल ग्रुप को लिबरेट करता है, फिनॉल को लिबरेट करता है और एक येलो कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है एल्कलाइन पीएच पे. और द इंटेंसिटी ऑफ येलो कलर प्रोड्यूस इज प्रपोर्शनल टू द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम. जितना ज़्यादा येलो कलर इंटेंस होगा, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी का येलो कलर प्रोड्यूस होगा, उसकी जो प्रपोर्शन है वो एंजाइम एक्टिविटी के इक्विवेलेंट होता है. उसके बाद ये जो कलर इंटेंसिटी है दैट इज मेजर्ड बाय डायरेक्ट कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड कलर डिस्क इन अ लॉवी बॉन्ड कंपैरेटर. एंड दिस टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू सॉ मिल्क एंड द मिल्क प्रिजर्व विद केमिकल प्रिजर्वेटिव्स. सॉ मिल्क और ऐसा मिल्क जिसके अंदर हमने केमिकल प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए हैं उसके लिए ये टेस्ट हम अप्लाई नहीं कर सकते. अब इसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि इसमें जो कलर इंटेंसिटी है, जो येलो कलर की इंटेंसिटी है, वो हम लॉवी बॉन्ड कंपैरेटर से कंपेयर करते हैं. तो लॉवी बॉन्ड कंपैरेटर क्या होता है, इसमें एक पीएच पूरी रेंज होती है, उसके अकॉर्डिंग जो भी डाइज होती हैं जो कलर प्रोड्यूस करती हैं वो पूरा एक इसका इंडिकेटर होता है. उससे हम जैसे कि पीएच इंडिकेटर वाला जो पेपर होता है जैसे कंपेयर करते हैं कलर कि अब ये पीएच अगर 7 है तो उसका येलो कलर होगा, 8 है तो उसका ग्रीन कलर होगा. तो उसी तरह की एक स्ट्रिप होती है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पीएच पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट डाई के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं. तो उससे हम ये मैच करते हैं. तो ये होता है लॉवी बॉन्ड कंपेरेटर. तो इस तरीके से हम ये एल्कलाइन टेस्ट का ये जो प्रिंसिपल है इसकी बात की है. अब हम बात करते हैं इसके लिए कौन कौन से एपरेटस चाहिए. तो इसके लिए हमें लिटमस पेपर चाहिए, फिल्टर पेपर वॉल्फमैन नंबर 2 फिल्टर पेपर चाहिए, पिपेट्स चाहिए 1, 5, और 10 ml की, टेस्ट ट्यूब चाहिए, रबर स्टॉपर चाहिए और लॉवी बॉन्ड कंपेरेटर चाहिए और वाटर पॉट चाहिए जिसका जो टेम्परेचर है हमने 37 डिग्री पे थर्मोस्टैटिस्टिकली कंट्रोल किया. अब बात आती है रिएजेंट्स की. तो इसमें हमें सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट बफर चाहिए जिसे हम बनाते हैं बाय डिसॉल्विंग 3.5 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट एंड 1.5 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इन 1 लीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर. 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर बनाने के लिए उसके अंदर हम ऐड करते हैं 3.5 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट एंड 1.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। दूसरा रिएजेंट जो चाहिए हमें, बफर सब्सट्रेट चाहिए, जिसे बनाने के लिए हमें डिसॉल्व करना होता है 1.5 ग्राम ऑफ डाई सोडियम पैरा नाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट इन 1 लीटर ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बफर। ये जो ऊपर हमने सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट बफर बनाया है उसका 1 लीटर लेके उसके अंदर हम 1.5 ग्राम डाई सोडियम पैरा नाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट को डिसॉल्व करते हैं। दिस सॉल्यूशन इज स्टेबल इफ़ यू स्टोर्ड इट इन द फ्रिज और इन द रेफ्रिजरेटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड और लेस फॉर 1 मंथ, बट अ कलर कंट्रोल टेस्ट शुड बी कैरिड आउट ऑन सच स्टोर्ड सॉल्यूशन। जो उसका कलर आता है वो उसको रिटेन करके रखना चाहिए, वो उसका वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आप कोई टेस्ट सॉल्यूशन उसके कलर का आप बना के उसके साथ ही स्टोर करके रख सकते हैं ताकि आपको उसका कलर डिफरेंस पता चल जाए, जैसे कि हम पॉजिटिव और निगेटिव कंट्रोल बनाते हैं। अब बात आती है प्रोसीजर की। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि वाटर बाथ का टेम्परेचर हमने 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन कर लिया। उसके बाद हम एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में 1 ml मिल्क लेते हैं जो कि हमें टेस्ट करना है, कि या तो हम रॉ मिल्क ले सकते हैं, हम कुछ 3-4 ट्यूब में भी ले सकते हैं कंपैरिजन एनालिसिस के लिए, कि एक में रॉ मिल्क ले लिया हमने, एक में जो डेयरी का आता है अमूल का मिल्क वो जो पास्चराइज होता है वो ले लिया है ना। तो इस तरीके से हम 2-3 टेस्ट ट्यूब में ले सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट मिल्क कंपैरिजन के लिए। तो एक टेस्ट ट्यूब में हमने 1 ml मिल्क लिया, देन इसमें हमने 5 ml जो बफर सब्सट्रेट था उसको ऐड किया, पिपेट करके पिपेटिंग से 5 ml बफर सब्सट्रेट को ऐड किया। बफर सब्सट्रेट था जो हमने ऊपर बनाए थे दो सॉल्यूशन, उसमें जो सेकंड सॉल्यूशन था वो बफर सब्सट्रेट था। उसके बाद उसको हमने आगे से स्टॉप करके उसको इन्वर्सली इन्वर्जन के थ्रू मिक्स किया टेस्ट ट्यूब को, और फिर हमने इसको वाटर बाथ के अंदर रख दिया। उसी टाइम पे हम एक कंट्रोल ट्यूब लगाएंगे जिसके अंदर हम 1 ml सेम बॉइल्ड मिल्क लेंगे और 5 ml जो है बफर सब्सट्रेट लेंगे, और उसी तरह से हम उसको इन्वर्स करके हम उसको उसके अंदर वाटर बॉथ के अंदर लगा देंगे। उसके बाद इसको इंक्यूबेशन के बाद इसको 2 घंटे बाद हम दोनों ट्यूब्स को वाटर बाथ में से रिमूव करेंगे और दोनों ट्यूब्स को इन्वर्ट करेंगे और उनका कलर चेंजेस देखेंगे। इनका जो कलर चेंज हम देखते हैं वो हम उसके लिए वही कंपैरेटर और स्पेशल डिस्क यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, तो उसके बाद हम कलर कंपैरेटर से दोनों का जो कंट्रोल है और जो टेस्ट सैंपल है उसका हम कलर नोट करते हैं और अपना रिजल्ट लिखते हैं। तो इस तरीके से ये अल्कलाइन फॉस्फेट टेस्ट जो है परफॉर्म किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज रिडक्टेज टेस्ट विच इज कॉल्ड MBRT, मिथिलीन ब्लू रिडक्टेज टेस्ट। ये जो MBRT टेस्ट है, दिस टेस्ट इज यूज्ड एज अ क्विक मेथड टू असेस द माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ रॉ एज वेल एज पाश्चराइज मिल्क। मतलब रॉ और पाश्चराइज मिल्क की में माइक्रोबियल फ्लोरा कितना लेवल तक है, प्रेजेंट है या नहीं है, इसके डिटेक्शन के लिए हम MBRT टेस्ट को यूज करते हैं। दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द ब्लू कलर ऑफ द डाई सॉल्यूशन एडेड टू द मिल्क गेट डिसकलराइज when the oxygen present in the milk get exhausted due to the microbial activity। इसके अंदर हम जो ब्लू कलर की डाई सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं करते हैं वो मिथिलीन ब्लू डाई होती है। वो जब हम मिल्क के अंदर ऐड करते हैं तो वो मिथिलीन ब्लू डाई जो कितनी देर में डिसकलराइज होती है उसके बेसिस पे हम ये बताते हैं कि उस मिल्क के अंदर कितना माइक्रोबियल एक्टिविटी यानी माइक्रोबियल पॉपुलेशन प्रेजेंट है। क्योंकि जितनी ज़्यादा माइक्रोबियल
पॉपुलेशन प्रेजेंट होगी उतना ही वो ऑक्सीजन एक्यूमुलेट करेगी, ऑक्सीजन लिबरेट करेगी, और वो ऑक्सीजन इस डाई को डिकलराइज करने में हेल्प करेगा। यानी जितनी जल्दी डिकलराइज होगी वो सॉल्यूशन, उतना ही माइक्रोबियल ज़्यादा कंटेंट, उतना ही ज़्यादा उस मिल्क के अंदर प्रेजेंट है। ओके, द सूनर द डिकलराइजेशन मोर इन्फीरियर इज द बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ द मिल्क अज्यूम टू बी। दिस टेस्ट इज वाइडली यूज एट द डेयरी रिसेप्शन डॉक्स प्रोसेसिंग यूनिट एंड मिल्क चिलिंग सेंटर्स where it is followed as acceptance and rejection criteria for the raw as well as processed milk। इस टेस्ट के थ्रू हम रॉ मिल्क और प्रोसेस मिल्क की क्वालिटी को देख सकते हैं कि उसके अंदर माइक्रोबियल लोड ज़्यादा है या नहीं। इसके थ्रू हम इसमें जो मिल्क है उसको एक्सेप्टेंस या एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर उसके अंदर ज़्यादा माइक्रोबियल पॉपुलेशन प्रेजेंट है, ज़्यादा माइक्रोबियल फ्लोरा प्रेजेंट है, तो उस मिल्क को हम रिजेक्ट करते हैं, वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। सो नाउ द ग्रेडिंग ऑफ रॉ मिल्क बेस्ड ऑन एमबीआरटी। MBRT test may be utilized for grading of milk, which may be useful for the milk processor to take a decision on further processing or further processing of the milk. ये जो grading है ये basically की गई है BIS 1479 part 3 1977 criteria के through इसकी grading की गई है, जिसके अंदर की ये टाइम दिया गया है और मिल्क की क्वालिटी दी गई है। तो अगर वो जो डाय है उसका कलर डिसअपेयर हो जाता है लेस देन 1 आवर में, तो ये जो मिल्क है वो पुअर ग्रेड का है। अगर डाय का कलर 1 से 2 घंटे के अंदर डिसअपेयर होता है तो ये मिल्क की क्वालिटी फेयर में रखी गई है। और अगर जो मिल्क का कलर है, डाय का कलर है मिल्क के अंदर, वो 3 से 4 घंटे के अंदर डिसअपेयर होता है, देन द मिल्क is good quality, then the milk is good quality, have good quality। अगर 5 घंटे से ज़्यादा टाइम लगता है डाई के डिसअपेयर होने में, डाई के कलर डिसअपेयर होने में, तो मिल्क बहुत अच्छी क्वालिटी का इसके अंदर ग्रेड दिया गया है। अब बात आती है प्रोसेस की, प्रोसीजर की, हम इस टेस्ट को किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो ये जो टेस्ट है हमें सबसे पहले स्टराइल कंडीशन में परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि हमारे टेस्ट ट्यूब प्रॉपरली स्टराइज होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर हम जब मिल्क डालेंगे तो टेस्ट ट्यूब अगर स्टराइल नहीं होगी तो टेस्ट ट्यूब का जो माइक्रोबियल कंटेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो मिल्क के अंदर आ जाएंगे, तो वो जो हमारा टेस्ट होगा वो फॉल्स रिजल्ट देगा। इसके लिए सबसे पहले हम एक स्टराइल टेस्ट ट्यूब के अंदर 10 ml मिल्क सैंपल ऐड करते हैं। MBRT टेस्ट ट्यूब जो होती है उसके अंदर हम 10 ml मिल्क सैंपल ऐड करते हैं। देन वी विल ऐड 1 ml MBRT डाई सॉल्यूशन, मतलब कि जो मिथिलीन ब्लू रिडक्टेज डाई होती है जिसे हम बनाते हैं 0.005 कंसंट्रेशन में, यानी 0.005 ग्राम डाई हम 100 ml में लेते हैं, परसेंट मतलब 100 ml में लेते हैं, इसको डिजॉल्व कर देते हैं, तो ये MBRT डाई बन जाती है। इस डाई का 1 ml निकाल के हम 10 ml मिल्क सैंपल के अंदर हम ऐड करते हैं। उसके बाद इसको स्टॉपर से, उसको हम रबड़ जो स्टॉपर होता है स्टरलाइज, उससे हम इसको स्टॉप करते हैं और इसे हम केयरफुली स्टैंड में हम वाटर बाथ जो होता है जिसके अंदर हम 37 टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, उसके अंदर हम इसको पुट रख देते हैं। फिर हम इसको रिकॉर्ड करते हैं टाइम को, कि इसका जब इंक्यूबेशन पीरियड स्टार्ट होता है तब से हम टाइम को रिकॉर्ड करते हैं, और थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद हम इसको देखते रहते हैं, चेक करते रहते हैं कि डाई का कलर पहले कितना था और अब किस कंडीशन में डाई का कलर है। फाइनली एटलीस्ट 4 to 5 hours तक पूरा हम इसको देखते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं और देखते हैं कि डाई का कलर कब डिसअपीयर हुआ। तो इंक्यूबेशन पीरियड के अकॉर्डिंग हम कलर चेंजेस को फॉलो करते हैं। हम टाइम ऐसे नोट करते हैं, इफ़ एनी सैंपल इज डिकलराइज्ड ऑन इंक्यूबेशन फॉर 30 minutes तो रिकॉर्ड द रिडक्शन टाइम एज MBRT इज 30 minutes। रिकॉर्ड सच रीडिंग एज रिडक्शन टाइम इन होल आवर्स. ठीक है, उसमें हम पूरा टाइम टू टाइम इसका नोट करते चले जाते हैं कि अगर 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच में कलर डिसअपेयर हुआ, 2 घंटे से 3 घंटे के बीच में कलर डिसअपेयर हुआ. इसके बाद अगर कभी कभी ऐसी भी कंडीशन आती है कि डिकलरेशन नहीं होता, उस केस में हम उस टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा इन्वर्ट करके मिक्स कर लेते हैं और फिर डिकलरेशन के लिए रखते हैं. तो इस तरीके से हम डिकलरेशन टाइम उसके अंदर प्रॉपर टाइम टू टाइम हम मेंटेन चेक करते हैं और फिर हम एनालिसिस करते हैं कि कौन सी ट्यूब को डिकलराइज होने में ज़्यादा टाइम लगा, कौन सी ट्यूब को डिकलराइज होने में कम टाइम लगा. उसके अंदर हम फिर उसके अकॉर्डिंग हम मिल्क की क्वालिटी या मिल्क का जो ग्रेड है वो डिटरमाइन करते हैं और पता लगाते हैं कि वो मिल्क किस टाइप का था, क्या वो पुअर क्वालिटी का था, गुड क्वालिटी का था, फेयर क्वालिटी का था. तो इस तरीके से आप अपने मिल्क की माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटी को एसेस कर सकते हो, उसका पता लगा सकते हो, चाहे वो रॉ मिल्क है या फिर वो पाश्चराइज मिल्क है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द MBRT मिथिलीन म्यूल रिडक्टेज टेस्ट. In syllabus, it has mentioned as only reductase test and phosphatase test. Okay, so if you have any doubt regarding this topic, you can directly contact me on my WhatsApp number personally. Thank you.